ओम शांति ओम शांति। आज हम सब अव्यक्त वाग्दारा के रिवाइज्ड मुरली सुनेंगे। प्यारे बाबा ने हम बच्चों को याद दिलाया है कि अपने स्वमान में रहने वाले हो आप, पूर्वज आत्माएं हो। और बाबा ने कहा कि आपका एक गीत है, पाना था सो पा लिया। फिर बाबा ने बच्चों के विशेषताओं का वर्णन करते हुए बाबा ने कहा कि आप बच्चे कितने ऊंच हो कि दुनिया जिसको ढूंढ रही है, परमात्मा को ढूंढ रही है, उसे आपने पा लिया है। साइंटिस्ट इतने रिसर्च कर रहे हैं, चांद तक पहुंच गए हैं, लेकिन आत्मा क्या चीज है उसको अभी तक उन्होंने नहीं समझा है। यहाँ तो बाबा का हर छोटा बच्चा, एक छोटे बच्चे को पूछेंगे तो कहेगा मेरी आत्मा ये है। तो आत्मा को भी पहचान लिया है। फिर बाबा ने कहा एक तरफ तो गीत गाते हैं, पाना था सो पा लिया, फिर दूसरा गीत बाबा के बच्चे क्या कहते हैं, कौन सा गीत गाते हैं, क्या करें, कैसे करें, ये हो गया है, मेरा स्वभाव है, मेरा संस्कार है। तो बाबा ने कहा कि जो भी बोझ है वो बाबा को दे दो। बाबा तो सागर है, वो तो सागर में समा जाएगा, अपने पास क्यों रखते हो। वो भी बाबा ने सुनाया, अभी हम सुनेंगे बाबा के महावाक्य। और साथ में बाबा ने बच्चों को सेवाओं की भी मुबारक भी दी है, और मुबारक के साथ साथ बच्चों के क्या पुरुषार्थ करना है वो भी बाबा ने बताया है। तभी हम सुनते हैं प्यारे बाबा के महावाक्य। आज की तारीख है 2 नवंबर 2025 और रिवाइज्ड मुरली की डेट है 31 अक्टूबर 2007। रिवाइज्ड मुरली की डेट है 31 अक्टूबर 2007 और आज की डेट है 2 नवंबर 2025। और मुरली का मुख्य हेडिंग अपने श्रेष्ठ स्वमान के फकुर में रहे असंभव को संभव करते बेफिकर बादशाह बनो। अपने श्रेष्ठ स्वमान के फकुर में रहे असंभव को संभव करते बेफिकर बादशाह बनो। आज क्या है कि बेफिकर बादशाह बनना है। आज बाप दादा अपने चारों ओर के श्रेष्ठ स्वमान अधिकारी विशेष बच्चों को देख रहे, कितने स्वमान है। बाबा कहते बच्चे तो उसके लिस्ट निकालते हैं, लेकिन उसके स्वरूप में टिकना है। आज बाप दादा अपने चारों ओर के श्रेष्ठ स्वमानधारी बच्चों को देख रहे हैं। हर एक बच्चे का स्वमान इतना विशेष है जो विश्व में कोई भी आत्मा का नहीं है। आप सभी विश्व की आत्माओं के पूर्वज भी हो। कौन सा स्वमान? आप सभी विश्व के आत्माओं के पूर्वज भी हो और पूज्य भी हो। सारी सृष्टि के वृक्ष की जड़ में आप आधार मूर्त हो। चाहे विश्व के पूर्वज पहली रचना है, सारे विश्व के पूर्वज आप कौन हो? पहली रचना है। बाप दादा हर एक बच्चे की विशेषताओं को देख खुश होते हैं, चाहे छोटा बच्चा है, चाहे बुजुर्ग माताएं हैं, चाहे प्रवृत्ति वाले हैं, हर एक बच्चे की विशेषता को देख बाप दादा खुश होते। बाबा बच्चों की हर प्रकार की विशेषता को देख कितना खुश होते। बाबा ने हर बच्चे की विशेषता को देख करके उसे अपना बनाया, लेकिन बच्चों को भी तो वैसा करना है ना। तो बाबा कहते हैं हर एक बच्चे की विशेषता को देख खुश होते हैं, चाहे छोटा बच्चा है, चाहे बुजुर्ग माता है, चाहे प्रवृत्ति वाले हैं, हर एक की अलग अलग विशेषताएं हैं। आजकल कितने भी बड़े से बड़े साइंसदान हैं, दुनिया के हिसाब से विशेष है। साइंटिस्ट को बहुत बड़ा विशेष मानते हैं ना, बाबा कहते दुनिया के हिसाब से विशेष है। जो प्रकृति जीत तो बने, कैसे आसमान में पहुंच गए, चंद्रमा के पास पहुंच गए, जो प्रकृति जीत तो बने चंद्रमा तक भी पहुंच गए, लेकिन इतनी छोटी सी ज्योति स्वरूप आत्मा को पहचान नहीं सके। यह छोटा सा बच्चा भी मैं आत्मा हूँ। कई बार छोटे छोटे बच्चे आते हैं ना, एक साल का होगा तो माँ बाप उनको सिखा देते हैं, तो क्या कहेंगे उसको, पूछो आत्मा कहाँ है, वो कहेगा यहाँ है। फिर पूछो आत्मा कहाँ है, वो जो सामने टीचर होगी उसके माथे पर भी हाथ लगाएगा, आत्मा यहाँ है। उसको इतना पक्का है कि जो वैज्ञानिक नहीं बता सके, जो महात्मा नहीं बता सके, छोटे छोटे बच्चों को पक्का हो जाता है ना। तो बाबा कहते हैं और यहाँ छोटा सा बच्चा भी मैं आत्मा हूँ, ज्योति बिंदु को जानता हूँ, फलक से कहता है मैं आत्मा हूँ। कितने भी बड़े महात्माएं हैं और ब्राह्मण आत्माएं हैं, और साथ में बाबा क्या कहते हैं, दुनिया में भी कितने महात्मा है, और लेकिन यहाँ ब्राह्मण माताएं क्या कहती है, माताएं फलक से कहती हैं हमने परमात्मा को पा लिया। अच्छा माताएं बोलो क्या कहते हैं, आप क्या कहेंगे, कोई पूछिए आपको तो क्या कहेंगे, कुछ भी नहीं बोला है ना, आता ही है। अरे बोलो ना, हम बाबा को पा लिया है, नहीं बोल सकते, बोलो सब, इससे तो भाई अच्छे, भाई बोलो फटाफट बोलो, हमने तो बाबा को पा लिया, बोलना चाहिए ना, फिर से बोलो सब। हाँ बस, जो भी मिले उसको ये नशा दिखाना है। तो बाबा कहते हैं कितने भी बड़े महात्माए हैं और ब्राह्मण माताएं हैं, यहाँ माताएं फलक से कहती हैं हमने परमात्मा को पा लिया है। पा लिया है ना, बाबा पूछते हैं, और महात्मा क्या कहते हैं, परमात्मा को पाना बहुत मुश्किल है, प्रवृत्ति वाले चैलेंज करते। बाबा के बच्चे यहाँ प्रवृत्ति वाले चैलेंज करते हैं, और उनको देख करके एक बार दादी ने सन्यासियों महात्माओं का प्रोग्राम रखा था, और पवित्र युगलों को बुलाया था, ब्रह्मचारी युगलों को बुलाया था, वो अपना अनुभव सुनाते थे, तो इतना उनको आश्चर्य होता था कैसी यंग कपल है, कैसे पवित्र जीवन व्यतीत करते हैं। तो बाबा कहते हैं प्रवृत्ति वाले चैलेंज करते हैं, हम सब प्रवृत्ति में रहते, साथ रहते, पवित्र रहते हैं, क्योंकि हमारे बीच में बाप है। कैसे रह सकते हैं, क्योंकि हमारे बीच में बाप है, इसलिए दोनों साथ रहते भी पवित्र रह सकते हैं, क्योंकि पवित्रता हमारा स्वधर्म है। पर धर्म मुश्किल होता है, स्वधर्म सहज होता है। और लोग क्या कहते हैं, लोग क्या कहते हैं, और बाबा के बच्चे क्या कहते हैं, लोग क्या कहते हैं, आग और कपूस साथ में रह नहीं सकते, बड़ा मुश्किल है। आप क्या कहते हो, बहुत सहज है। आप सबका शुरू शुरू का एक गीत है, तो शुरू शुरू में यज्ञ की स्थापना हुई, और उस समय बाबा के टाइम पर बच्चे गीत गाते थे, और कितने भी सेठ स्वामी हैं, लेकिन एक ने भी अलफ को नहीं जाना है, छोटी सी आत्मा को भी नहीं जाना है। लेकिन आप सभी बच्चों ने जान लिया और पा लिया। एक है जानना, एक है पाना। तो बाबा क्या कहते हैं, आप सभी बच्चों ने जान लिया और पा लिया। इतने निश्चय और फोकस से बोलते हो, असंभव संभव है। बाप दादा भी हर एक बच्चे को विजयी रतन देख हर्षित होते हैं, क्योंकि हिमते बच्चे मदते बाप। इसलिए दुनिया के लिए जो असंभव बातें हैं, वह आपके लिए सहज और संभव हो गई है। फकुर रहता है कि परमात्मा के हम डायरेक्ट बच्चे, हम परमात्मा के डायरेक्ट बच्चे हैं। इस नशे के कारण, निश्चय के कारण, परमात्मा बच्चे होने के कारण माया से भी बचे हुए। माया से बचने का तरीका नशा रहे कि हम बाबा के बच्चे हैं। बार बार कहते ना माया आ जाती है, माया तंग करती है। तो बाबा ने एक युक्ति बता दी, तरीका बता दिया कि माया से बचने का तरीका है इस नशे में रहना है कि हम परमात्मा के बच्चे हैं। इस कारण आप बचे हुए हो। बच्चा बनना अर्थात सहज बच जाना, तो बच्चे भी हो और सब विघ्नों से समस्याओं से भी बचे हुए। कितनी अच्छी बात कि बाबा के बच्चे भी हैं और सब विघ्नों से और समस्याओं से भी बचे हुए हैं। तो अपने इतने श्रेष्ठ स्वमान को जानते हो ना, क्यों सहज है? क्योंकि आप साइलेंस की शक्ति द्वारा परिवर्तन शक्ति को कार्य में लगाते। परिवर्तन कैसे हो सकता है? साइलेंस की शक्ति के द्वारा। क्योंकि आप साइलेंस की शक्ति के द्वारा परिवर्तन शक्ति को कार्य में लगाते हो। नेगेटिव को पॉजिटिव में, नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन कर लेते हो। माया कितने भी समस्या के रूप में आती है, लेकिन आप परिवर्तन की शक्ति, साइलेंस की शक्ति से समस्या का समाधान स्वरूप बन जाते हो। तो बाबा कहते हैं, तो कारण को निवारण में बदल देते हो, है ना? इतनी ताकत कारण को निवारण में बदलना, समस्याओं को समाधान स्वरूप बनना, बाबा कहते है ना इतनी ताकत। कोर्स भी कराते हो ना, नेगेटिव को पॉजिटिव करने की विधि समझाते हो। ये परिवर्तन शक्ति बाप के द्वारा वर्षे में मिली। कौन सा वर्षा मिला है? बाबा के द्वारा परिवर्तन शक्ति बाप के द्वारा वर्षे में मिली है। तो बाबा कहते हैं, इसलिए बाप दादा एक ही शक्ति नहीं, सर्व शक्तियां परमात्मा वर्षा मिला है। इसलिए बाप दादा हर रोज कहते हैं, हर रोज मुरली सुनते हो ना। अब बाबा मुरली में रोज नई नई बातें सुनाते। तो बाबा कहते हर रोज मुरली सुनेंगे तो कोई भी बात मिस नहीं होगी, कोई भी वरदान भी मिस नहीं होगा। इसलिए बाबा क्या कह रहे हैं, हर रोज मुरली सुनते हो ना, तो हर रोज बाप दादा यही कहते हैं। क्या कहते हैं? बाप को याद करो और वर्षे को याद करो। बाप की याद सहज क्यों आती? बाबा की याद आती है ना, सहज याद क्यों आती है? क्योंकि प्राप्ति है ना। तो बाबा कहते बाप की याद सहज क्यों आती है? जब वर्षे की प्राप्ति को याद करते हो तो बाप की याद प्राप्ति के कारण सहज आ जाती है। हर एक बच्चे को ये रूहानी फक्र रहता है ना, दिन में गीत गाते हैं। कौन सा गीत गाते हैं? पाना था सो पा लिया, गाओ, जो पाना था सो पा लिया। सभी के दिल में ये स्वतः ही गीत बजता है ना, फकुर है ना। जितना इस फकुर में रहेंगे तो फकुर की निशानी है बेफिकर बादशाह। जितना इस फकुर में रहेंगे तो फकुर की निशानी है बेफिकर स्वतः ही होंगे। अगर किसी भी प्रकार का संकल्प, बोल या संबंध, संपर्क में फिक्र रहता है तो फकुर नहीं है। कोई भी प्रकार का फिक्र है तो बाबा कहते फकुर, फकुर मीन्स नशा। वो मतलब होता है ना, जैसे हम बाबा के बच्चे हैं तो बाबा कहते वो फकुर नहीं है। बाप दादा ने क्या बनाया है? बेफिकर बादशाह बनाया है। बोलो, बेफिकर बादशाह हो ना, जो बेफिकर बादशाह बाबा को बता दें हाथ खड़ा करके। हाँ, तो बाबा कहते बोलो बेफिकर बादशाह हो ना, है तो हाथ उठाओ। जो बेफिकर, बाबा ने हाथ उठवाया, जो बेफिकर बादशाह है तो हाथ उठाओ। बेफिकर हूँ या कभी कभी फिकर आ जाता है। अच्छा है, जब बाप भी फिकर है तो बच्चों को क्या फिकर है? बाबा को कोई चिंता नहीं, बाबा को खुशी है मेरे बच्चे इतने अच्छे हैं, तो बाबा को कोई चिंता नहीं है तो बच्चों को क्यों फिकर है? बाप दादा ने तो कह दिया है कि सब फिक्र वह किसी भी प्रकार का बोझ है तो बाप दादा को दे दो। बाप सागर है ना, सागर में कुछ भी डालो तो समा जाएगा। तो बाबा कहते बाप दादा सागर है ना, तो बोझ सारा समा जाएगा। कभी बाप दादा बच्चों का एक गीत सुनकर के मुस्कुराते, कभी कभी बाबा भी बच्चों का एक गीत है वो सुनते हैं तो बाबा को भी कोई हंसी भी आती है। हंसी तो क्या आएगी, बाबा मुस्कुराते हैं। कभी कभी बाप दादा बच्चों का एक गीत सुनकर के मुस्कुराता है। पता है कौन सा गीत है? सबको पता है लेकिन चुप रहे बाबा के सामने, क्या करें कैसे करें। कभी कभी तो गाते हो ना, ये तो सब गाते, क्या करें कैसे करें, ये हो गया वो हो गया, तो बाबा कहते कुछ भी कहो लेकिन बीच बीच में तो गाते हो ना, कभी कभी तो गाते हो ना। बाप दादा तो सुनता रहता, बल बच्चे गाते रहो बोलते रहो क्या करें। फिर बाबा को कहेंगे बाबा ये करो ना, अरे बाबा तो कर रहे, उनको कहते करो ना, तो बाबा कहते बाबा सुनता ही रहता, बोलते रहो आप कितना भी बोलते रहो, बाबा सुनते हैं और मुस्कुराते हैं। बाप दादा सुनता रहता है, लेकिन बाप दादा का बच्चों को यही कहते हैं, ये मेरे मीठे बच्चे, लाडले बच्चे। बाबा बच्चों को क्या कहते हैं? लेकिन बाप दादा तो बच्चों को यही कहते हैं, ये मीठे बच्चे, लाडले बच्चे, साक्षी दृष्टा की स्थिति की सीट पर सेट हो जाओ और सीट की सेट होके खेल देखो, और सीट की पर सेट होकर के खेल देखो, बहुत मजा आएगा। वह त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित हो जाओ, सीट से नीचे उतरते हो इसलिए अपसेट होते हो, सेट रहो तो कभी भी अपसेट नहीं होंगे। कभी कहते हैं मेरे को गुस्सा आता, मेरे को ये चीज अच्छी नहीं लगती, मैं क्या करूं, मेरे को ऐसा होता है, तो बाबा क्या कहते हैं, साक्षी होकर के सीट पर रहो और देखो और एंजॉय करो। लेकिन बाबा कहते हैं सेट रहो तो कभी भी अपसेट नहीं होंगे। कौन सी तीन चीजें बच्चों को परेशान करती है? किस कारण से गीत गाते हैं, किस कारण से अपसेट होते हैं? तो तीन चीजें, कौन सी तीन बातें बाबा ने कही? एक है चंचल मन, और दूसरा है भटकती बुद्धि, और बाबा कहते हैं और तीसरा है पुराने संस्कार। चंचल मन, भटकती बुद्धि और तीसरा पुराने संस्कार। बाप दादा को बच्चों की एक बात सुनकर हंसी भी आती है, पता है कौन सी बात है। बाबा कहते हैं बाबा क्या करें, मेरे पुराने संस्कार है ना। बाप दादा मुस्कुराता है जब कह ही रहे हो मेरे संस्कार तो मेरा बनाया ना, पुराने संस्कार को आपने अपना बनाया है। तो बाबा बच्चों की पॉइंट को लेकर उनको बता रहे हैं, जब तुम कहते हो कि मेरे संस्कार तो उसको आपने अपना बनाया है, तो मेरा बनाया है ना, तो मेरे पर तो अधिकार होता ही है। अब संस्कार परिवर्तन क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि उसको अपना बना लिया है, तो मेरे पर तो अधिकार होता ही है। जब पुराने संस्कार को मेरा बना दिया तो मेरा तो अपनी जगह लेगा ना। क्या ये ब्राह्मण आत्मा कह सकती है कि मेरे पुराने संस्कार हैं? बाबा कहते ब्राह्मणों को तो कहना ही नहीं चाहिए। क्या ब्राह्मण आत्मा कह सकती है ये पुराने संस्कार है, मेरा कहा तो मेरे ने अपनी जगह बना दी है। आप तो बाबा कहते हैं ये पांच के संस्कार हैं, ये शूद्र जीवन के संस्कार हैं, ब्राह्मण जीवन के नहीं है। तो मेरा कहा तो वह भी पुराने हो गए, तो वह भी मेरे अधिकार से बैठ गए। अब किसको अपना बनाएंगे, वो कह गए मेरा ही है, तो अपने अधिकार से बैठ जाते हैं। मेरा कहा तो वह मेरे अधिकार से बैठ गए हैं। ब्राह्मण जीवन के श्रेष्ठ संस्कार को जानते हो ना, और ये संस्कार जिनको आप पुराने कहते हो वह पुराने भी नहीं है। फिर बाबा और बता रहे, कहते ना पुराने संस्कार हैं। बाबा कहते हैं जिनको आप पुराना कहते हो पुराने भी नहीं है। क्यों? आप श्रेष्ठ आत्मों का पुराने से पुराना संस्कार अनादि और आदि संस्कार है, ये तो द्वापर और मध्य के संस्कार। सत्युग के शुरू के संस्कार तो प्योर है, लेकिन द्वापर और मध्य के ये संस्कार ऐसे बनते, ये तो द्वापर और मध्य के संस्कार हैं। तो मध्य के संस्कार को बाप की मदद से समाप्त कर देना कोई मुश्किल नहीं है। तो मध्य के संस्कार को बाप की मदद से समाप्त कर देना, बाबा कहते हैं कोई मुश्किल नहीं है। परंतु होता क्या है, बाप जो सदा आपके साथ कंबाइंड है उसे कंबाइंड जान सहयोग नहीं लेती। ये जरूर कहते हैं बाबा कंबाइंड है, बाबा हमारा साथी है, लेकिन उसको सहयोगी साथी समझ करके कंबाइंड जान करके बाबा से सहयोग नहीं लेते। तो बाबा कहते हैं बाप जो सदा आपके साथ है उसे कंबाइंड जान सहयोग नहीं लेते। कंबाइंड का अर्थ ही है समय पर सहयोगी, लेकिन समय पर सहयोग न लेने के कारण मध्य के संस्कार महान बन जाए। तो मध्य के संस्कार जो है वो पावरफुल बन जाते हैं। बाप दादा जानते हैं कि सभी बच्चे बाप के प्यार के पात्र हैं, अधिकारी हैं। बाबा जानते हैं प्यार के कारण तो ये सभी पहुंच गए। बाबा से प्यार है, हर बार कितने भी टर्न हो बाबा के, कई बच्चे कहते हैं हमको तो बाबा के टर्न में आना है क्योंकि बाबा से प्यार है। कई तो ऐसे है पहला टर्न हो तो वो आ जाते हैं क्योंकि बाबा से प्यार है। बाबा आ रहे हैं और हम ना मिले तो कितना मुश्किल होता है, तो उनको रह नहीं सकते, इसलिए बाबा से प्यार है तो पहुंच जाते हैं। तो बाबा कितनी बाप दादा जानते हैं सभी बच्चे बाप के प्यार के पात्र हैं, अधिकारी हैं। बाबा जानते हैं कि प्यार के कारण सभी पहुंच गए हैं, चाहे विदेश से आए हैं चाहे देश से आए। इस टर्न में अधिकतर विदेश के भी बहुत से भाई बहने होते हैं, कुछ अधिकतर तो ज्ञान से ठहरे। जो विदेशी भाई बहने यहाँ ठहरे हाथ खड़ा करें। हाँ काफी सारे हैं तालीब बजाओ इनके लिए। बाबा तो प्यार से बुलाते हैं और बाबा के घर में आना ये भी एक बहुत बड़ी प्यार की निशानी है। तो बाबा कहते हैं, बाबा जानते हैं कि प्यार के कारण सभी पहुंच गए हैं, चाहे विदेश से आए हैं चाहे देश से आए, लेकिन सभी परमात्म प्यार के आकर्षण से अपने घर में पहुंचे। भारतवासी जो पार्टी में हाथ खड़ा करे, चाहे एक रात के लिए हाथ खड़ा करो, जो भी आए देखो कितने सारे आए, ठहरे नीचे हैं, लेकिन एक रात एक सुबह की क्लास के लिए कई भाई बहने आते हैं। तो आप सबके लिए भी ताली बजाओ और इनके लिए भी, अपने लिए भी ताली बजाओ है। लेकिन सभी परमात्मा प्यार के आकर्षण से अपने घर पहुंचे हैं। बाप दादा भी जानते हैं प्यार में मेजॉरिटी पास है। कितनी बड़ी बाबा ने सर्टिफिकेट दे दिया, प्यार में मेजॉरिटी पास है। विदेश से प्यार के प्लेन में पहुंच गए। विदेशी भी कैसे, कितनी डिफिकल्टीज आती है आजकल प्लेन में आने का, और आजकल कभी आंधी है तूफान है कई बातें आती है, लेकिन बाबा का प्यार बच्चों को सेफ्टी से ले आता है। विदेश से प्यार के प्लेन में पहुंच गए, बोलो सभी प्यार के डोर से बंधे हुए यहाँ पहुंच गए हो ना। ये परमात्म प्यार दिल को आराम देने वाला है। परमात्म प्यार दिल को आराम देने वाला है। अच्छा है जो पहली बार यहाँ पहुंचे वह हाथ उठाओ। कई बाबा के नए नए बच्चे आते ना, जो विदेशी पहली बार है वो हाथ खड़ा करे, फर्स्ट टाइमर्स। हाँ तो बाबा कहते हैं जो पहली बार यहाँ पहुंचे वे हाथ उठाओ, हाथ हिलाओ। पहले हाथ उठाए फिर बाबा ने इनको कहा हाथ हिलाओ, भले पधारे। अभी बाप दादा ने जो होमवर्क दिया था वह होमवर्क याद है, बाबा ने हर मुरली के अंदर बच्चों को होमवर्क देते हैं। अभी बाप दादा ने जो होमवर्क दिया था याद है, वह होमवर्क याद है। बाप दादा के पास कई तरफ से रिजल्ट आई है, क्योंकि जब सीजन का अंत होता है ना तो बाबा 6 महीने के लिए होमवर्क देते, और जब सीजन की स्टार्टिंग होती है तो बाबा उसका फिर बच्चों के रिजल्ट सुनाते। तो अभी बाप दादा के पास कई तरफ से रिजल्ट आई है, सभी की रिजल्ट नहीं आई, बाबा पूरा क्लियर समाचार देते कोई की कितने परसेंटेज में आई है। लेकिन अभी क्या करना है, बाप दादा क्या चाहते हैं? बाप दादा यही चाहते हैं कि सब पूजनीय आत्माएं हैं, तो पूजनीय आत्माओं का विशेष लक्षण दुआ देना ही है। तो आप सभी जानते हो आप सभी पूजनीय आत्माएं हो, कि दुआ देना अर्थात दुआ लेना अंडरस्टूड हो जाता है। कई पूछते हैं दुआ लेना कैसे है, दुआ देना तो ठीक है लेकिन दुआ लेना कैसे है? तो बाबा ने इसका जवाब दे दिया कि दुआ देना ऑटोमेटिकली दुआ मिलती है, ये अंडरस्टूड है। कई कई नए बच्चे आते हैं ना पूछते हैं बहन जी हम ये दुआ लेना कैसे, दे तो सकते हैं। तो बाबा ने उसका जवाब दे दिया है कि ये दुआ देना अर्थात दुआ लेना अंडरस्टूड हो जाता है। जो दुआ देता है, जिसको देते हो उसके दिल से बार बार देने वाले के लिए दुआ निकलती है ना। तो हे पूज्य आत्माएं, आपका तो निजी संस्कार है दुआ देना। देखो बाबा भी क्या कह रहे हैं, बाबा कहते हैं हे पूज्य आत्माएं। बाबा को बच्चों के लिए किस प्रकार से कहना कितनी बड़ी विशेष आत्मा है, बात है कि दुनिया परमात्मा को पूजनीय कहती है और बाबा बच्चों को कहते हैं कि मेरे बच्चे पूजनीय है। तो बाबा क्या कह रहे हैं, तो ये पूज्य आत्माएं आपका तो निजी संस्कार है दुआ देना, अनादि संस्कार है दुआ देना। निजी संस्कार और अनादि संस्कार है दुआ देना। जब आपके जड़ चित्र भी दुआ दे रहे हैं तो आप चैतन्य पूज्य आत्माओं को तो दुआ देनी चाहिए, जड़ चित्रों से उनको भक्तों को कितनी दुआएं मिलती है, कितनी ब्लेसिंग मिलती है। तो बाबा कहते जब आप चैतन्य में हो तो आपको दुआ देना ये नेचुरल संस्कार है, इसको कहो मेरा संस्कार। अब बाबा को कहते हैं मेरा संस्कार है, पुराना संस्कार है। तो बाबा कहते दुआ देना इसको कहो मेरा संस्कार है। मध्य और द्वापर के संस्कार नेचुरल नेचर हो गए। अभी क्या स्थिति है कि द्वापर के संस्कार जो है वो अपने बना दिए हैं, तो मध्य और द्वापर के संस्कार नेचुरल और नेचर हो गए। वास्तव में संस्कार दुआ देने के नेचुरल नेचर, आत्मा की नेचुरल नेचर क्या है, दुआ देना। जब किसी को दुआ देती हूँ तो वह आत्मा कितनी खुश होती है, वह खुशी का वायुमंडल कितना सुखदायी होता है। तो जिन्होंने भी होमवर्क किया है उन सबको, चाहे वे आए हैं चाहे नहीं आए हैं, लेकिन वे सब बाप दादा के सामने, बाबा के सामने तो सब बच्चे होते ना, कुछ तो सामने बैठे थे कुछ नहीं थे। तो बाबा ने कहा कि जिन्होंने होमवर्क किया है उन सबको, चाहे आए हैं चाहे नहीं आए हैं, लेकिन बाप दादा के सामने हैं, तो उनको बाप दादा मुबारक दे रहे हैं। फिर बाबा सब बच्चों का हिसाब लेते, पहले तो जिन्होंने किया उनको मुबारक दिया, और फिर जिन्होंने नहीं किया है और होमवर्क किया है, हाँ तो बाबा कहते हैं होमवर्क किया है तो उसे अपने नेचुरल नेचर बनाते हुए आगे भी करते और कराते रहना। और जिन्होंने थोड़ा बहुत किया, कईयों ने पूरा किया, पूरा तो क्या काफी करना है, कईयों ने किया कईयों ने थोड़ा किया, फिर बाबा कहते जिन्होंने थोड़ा बहुत किया है या नहीं भी किया है तो वह सभी अपने को सदा मैं पूजे आत्मा। बाबा बच्चों को कभी भी नीचा नहीं दिखाते, बाबा कहते अच्छे कुछ नहीं किया तो किन्हीं कारण से नहीं किया, लेकिन ये तो कर सकते ना, वह सदा पक्का करें कि मैं पूज्य आत्मा हूँ। तो बाबा कहते हैं जिन्होंने थोड़ा बहुत किया नहीं भी किया है तो वह सभी अपने को सदा मैं पूज्य आत्मा हूँ, मैं बाप के श्रीमत पर चलने वाली विशेष आत्मा। एक है पूज्य आत्मा, दूसरा बाप की श्रीमत पर चलने वाली विशेष आत्मा हूँ। इस स्मृति को बार बार अपनी स्मृति और स्वरूप में लाना, क्योंकि हर एक से जब पूछते हैं आप क्या बनने वाले हो तो सब कहते हैं कि हम लक्ष्मी नारायण बनने वाले हैं। राम सीता में कोई हाथ नहीं उठाता, कितना भी को राम सीता में कोई हाथ नहीं उठाएगा, राम सीता के राज्य में ऑटोमेटिकली आना ही है, लेकिन बनना क्या है, लक्ष्मी नारायण। राम सीता में कोई हाथ नहीं उठाता। जब लक्ष्य है 16 कला बनने का तो 16 कला अर्थात परम पूज्य पूज्य आत्मा का कर्तव्य ही है दुआ देना। ये संस्कार चलते फिरते सहज और सदा के लिए बना, दुआ देना ये संस्कार चलते फिरते सहज और सदा के लिए बनाओ। हो ही पूज्य, बाबा कहते हो ही पूज्य, बस उसको याद करना है, हो ही पूज्य, पूज्य होना हो ही 16 कला। तो लक्ष्य यही है ना, बाप दादा खुश हैं कि जिन्होंने भी होमवर्क किया है उन्होंने अपने मस्तक में विजय का तिलक बाप द्वारा लगा लिया। बाबा कहते जिसने होमवर्क किया तो ऑटोमेटिकली उनको बाबा के द्वारा विजय का तिलक मिल गया। बाप दादा खुश हैं और कि जिन्होंने भी किया है उन्होंने अपने मस्तक में विजय का तिलक बाप द्वारा लगा लिया। साथ में सेवा के समाचार भी बाप दादा के पास सब तरफ से, वर्गों की तरफ से, सेंटर की तरफ से बहुत अच्छी रिजल्ट सहित पहुंच गया। उसमें बाबा ने सभी विंग की सेवा के लिए और सेंटर पर विशेष सेवा के लिए प्लान बताए थे, तो बाबा के पास रिजल्ट पहुंच गई है। तो एक होमवर्क करने की मुबारक, सेवा तो बहुत प्यार से करते ना, तो बाबा कह रहे हैं कि एक होमवर्क करने की मुबारक और साथ में सेवा की भी मुबारक। पदम गुना है, पदम गुना है, सेवा के मुबारक पदम पदम गुना है। बाबा ने देखा कि गांव गांव में संदेश देने की सेवा बहुत अच्छे तरीके से मेजॉरिटी एरिया में की है। उस समय गांव गांव की सेवा शुरू किया था और धीरे धीरे कर भी रहे थे, और अभी तो इतनी सेवा है गांव गांव की, बहुत सेवा करते हैं। तो बाबा कहते बाप ने देखा गांव गांव में संदेश देने की सेवा बहुत अच्छे तरीके से मेजॉरिटी एरिया में की है, तो ये सेवा भी रहम दिल बन कर की ना, इसलिए सेवा के उमंग उत्साह में रिजल्ट भी अच्छी दिखाई है। ये मेहनत नहीं की है, लेकिन बाप के प्यार अर्थात संदेश देने से प्यार है। सेवा करना मीन्स बाबा का प्यार, और बाबा का संदेश देना ये भी बाप से प्यार है। तो बाबा अर्थात संदेश देने से प्यार, तो प्यार के मोहब्बत में सेवा की है। सेवा कैसे करते हैं? बाबा के प्यार के मोहब्बत में सेवा की है। तो प्यार का रिटर्न सब सेवाधारियों को स्वतः ही बाप का पदम पदम गुना प्यार प्राप्त है और होता ही रहेगा। कितनी अच्छी दुआ दे दी बाबा ने, वरदान दे दिया, प्यार का रिटर्न सेवा और सेवा का रिटर्न प्यार, और वो प्यार का रिटर्न होता ही रहेगा। साथ में सभी अपनी प्यारी प्यारी दादी को बहुत स्नेह से याद करते हुए दादी को प्यार का रिटर्न दे रहे। दादी तो सेवा के लिए बहुत प्लान बनाती थी। आपको याद होगा कभी कभी दादी सुबह अमृत वेला योग करने के बाद आती थी, कहती थी कि आज बाबा ने मुझे टच किया है, आज 1,00,000 लोगों को संदेश देना है। आपको याद हो कि दादी ने जब ये पहला बार ये बात सबके सामने रखी तो दादी का था कि 1,00,000 लोग इकट्ठे हों, और ये प्लान दादी ने बड़ी बहनों की मीटिंग, बड़े भाइयों की छोटी मीटिंग में रखा था। तो सब ने कहा दादी ये तो कहाँ हो सकता है, कैसे हो सकता है। दादी ने कहा नहीं, मेरे को बाबा ने टच किया है। तो सब ने कहा अच्छा करेंगे। तो जैसे ही प्लान किया 1,00,000, तो कहा कहीं 1.5 लाख, कहीं 2 लाख, इतने लोग आने लगे सोच भी नहीं सकते। तो दादी ने भी ये गांव गांव की सेवा का प्लान दिया था, तो सबने करके दिया, तो दादी भी उस सेवा के प्यार का रिटर्न दे रही है। तो बाबा कहते हैं दादी को प्यार का रिटर्न दे रहे हैं। ये प्यार की खुशबू बाप दादा के पास बहुत अच्छी तरह से पहुंच गई है। अभी जो भी मधुबन में कार्य चल रहे हैं, चाहे विदेशियों के चाहे भारत के, वह सब कार्य एक दो के सहयोग और सम्मान के आधार पर बहुत अच्छे सफल हुए। भारत में तो क्या होता है, हम कॉन्फ्रेंसेस होती है, और आजकल विंग्स के कॉन्फ्रेंसेस होते रहते हैं, विदेशियों की रिट्रीट चलती है। उस समय विदेशियों का अक्टूबर में नेशनल कोऑर्डिनेटर की रिट्रीट होती थी, और उस समय तो विदेशी, अभी तो इनकी नेशनल कोऑर्डिनेटर की रिट्रीट जो है फरवरी में होता है, तो उस समय अक्टूबर में होता था। तो और इनकी कई रिट्रीट होती थी, सारे विदेश के मुख्य बहनें आती, तो उनके कई मीटिंग्स चलती है। तो बाबा कह रहे हैं सम्मान के आधार पर बहुत अच्छे सफल हुए, आगे भी होने वाले कार्य सफल हुए पड़े हैं, क्योंकि सफलता तो आपके गले का हार है। बाप के गले के हार भी हो, सफलता आपके गले का हार है, और बाप के गले के भी आप हार हो। बाप ने याद दिलाया था कि कभी हार नहीं खाना, क्योंकि आप बाप के गले का हार हो। कितनी बड़ी बात, बाबा ने कहा कभी हार नहीं खाना क्योंकि आप बाप के गले का हार हो। तो गले का हार कभी हार खा नहीं सकता, तो हार बनना है या हार खानी। बाबा पूछ रहे गले, बाबा के गले का हार बनना है या हार खानी है? नहीं ना, सबने कहा हमको हार नहीं खानी है, तो बाबा कहते नहीं है ना, हार बनना अच्छा है ना, तो हार कभी नहीं खाना। हार बनना है तो हार कभी नहीं खाना। तो बाबा ने कहा तो हार कभी नहीं, खाने वाले तो अनेक करोड़ों आत्माएं हैं, आप हार बन के गले में पिरोए गए। दुनिया में हार खाने वाले करोड़ों आत्माएं हैं, तो बाबा कहते हार खाने वाले तो करोड़ों आत्माएं, आप हार बन के गले में पिरोए गए हो ना, ऐसे है ना। तो संकल्प करो बाप के प्यार में माया कितने भी तूफान सामने लाए, लेकिन मास्टर सर्वशक्तिमान आत्माओं के आगे तूफान भी तोहफा बन जाएगा। ऐसा वरदान सदा याद रखो, कितने भी ऊंचा पहाड़ हो, पहाड़ बदल के रुई बन जाएगा। बाबा के गले के हार के बच्चों का क्या होगा, कितना भी ऊंची समस्या हो पहाड़ समान, तो पहाड़ भी रुई बन जाएगा। अभी समय की समीपता प्रमाण वरदानों को हर समय अनुभव में लाओ, अनुभव की अथॉरिटी बनो। जब चाहो तब अपने अशरीरी बनने की, फरिश्ता स्वरूप बनने की एक्सरसाइज करते रहो। अभी अभी ब्राह्मण, अभी अभी फरिश्ता और अभी अभी अशरीरी चलते फिरते काम काज करते हुए भी एक मिनट दो मिनट निकाल अभ्यास करो। क्या अभ्यास करना है? अभी अभी ब्राह्मण, अभी अभी फरिश्ता। चेक करो जो संकल्प किया वही संकल्प अनुभव हुआ, जो संकल्प किया वही स्वरूप अनुभव हुआ। अच्छा, तो बाबा बता रहे हैं चारों ओर के सदा श्रेष्ठ स्वधान, अच्छा चारों ओर के सदा श्रेष्ठ स्वमान धारी, सदा स्वयं को परम पूज्य और पूज्य अनुभव करने वाले, सदा अपने को हर सब्जेक्ट में अनुभवी स्वरूप बनाने वाले, सदा बाप के दिल तत्वनशीन, बेकुटी की तत्वनशीन, सदा श्रेष्ठ स्थिति के अनुभवों में स्थित रहने वाले चारों ओर के सभी बच्चों को याद प्यार और नमस्ते। अच्छा मीठ आगे भी है मुरली, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। अभी फिर बाबा फिर से बात कर रहे हैं बच्चों से, सभी तरफ से सभी के पत्र ईमेल समाचार सभी बाप दादा के पास पहुंच गए। जब बाबा के आने का दिन होता था उससे पहले बहुत से पत्र, कोई लिखत में देता, कोई ईमेल भेजते, कोई पत्र भेजते, कोई कार्ड बना करके भेजते थे, तो बाबा सबके पत्रों का रिस्पांस दे रहे हैं। सभी तरफ से सभी के पत्र ईमेल समाचार सभी बाप दादा के पास पहुंच गए। तो सेवा का फल और बल, सेवा का फल और बल सभी सेवाधारियों को प्राप्त है और प्राप्त होता रहेगा। प्यार के पत्र भी बहुत आते हैं, इतने पत्र आते हैं बाबा को, इतने पत्र आते थे, ईमेल आते थे, बाबा आई एम ओके, फिर बाबा कहते प्यार के पत्र भी बहुत आते हैं, परिवर्तन के पत्र भी बहुत आते, दोनों बैलेंस है, प्यार के पत्र भी बहुत आते हैं और परिवर्तन के पत्र भी बहुत आते हैं। परिवर्तन की शक्ति वालों को बाप दादा अमर भव का वरदान दे रहे। देखिए जिसने संकल्प किया और करके दिखाया, तो बाबा कहते हैं परिवर्तन की शक्ति वालों को बाप दादा अमर भाव का वरदान दे रहे हैं। जिन सेवाधारियों ने श्रीमत को पूरा फॉलो किया, एक श्रीमत थोड़ा थोड़ा फॉलो करना, तो बाबा कहते जिन सेवाधारियों ने श्रीमत को पूरा फॉलो किया है, ऐसे फॉलो करने वाले बच्चों को बाप दादा कहते हैं सदा फरमांबरदार बच्चे। वहां जिन्होंने परिवर्तन किया उनको क्या बोला, सदा अमर भव, और जो श्रीमत का पालन किया उनको बाबा क्या कहते सदा फरमांबरदार बच्चे। वहां बाप दादा ये वरदान दे रहे हैं, कितना बड़ा वरदान मिल गया, और प्यार वालों को बहुत बहुत प्यार से दिल में समाने वाले अति प्यारे और अति माया के विघ्नों से न्यारे ऐसा वरदान दे रहे। तीन प्रकार के बच्चों को तीन तरह के वरदान दिए, एक परिवर्तन शक्ति, दूसरा श्रीमत को फॉलो करने वाले, तीसरे प्यारे बच्चे, उनको भी वरदान दिया। अच्छा अभी सबके दिल में क्या उमंग आ रहा है, एक ही उमंग बाप समान बनना ही है, वह है उमंग, बाबा कहते है वह उमंग, पांडव हाथ उठाओ, बनना ही है, देखेंगे बनेंगे गे ये नहीं करना, कहते करेंगे, हाँ बाबा करेंगे, आपने कहा ना करेंगे, तो बाबा कहते देखेंगे बनेंगे गेंगे नहीं करना, लेकिन बनना ही है, पक्का है ना। फिर बाबा दोबारा कहते पक्का, अच्छा हर एक अपना ओके का कार्ड अपने टीचर के पास चार्ट के रूप में देते रहना। कई बार भाई बहने पत्र लिखते बहुत लंबे चौड़े लिखते थे, बाबा कहते थे इतना लंबे नहीं लिखो, ओके लिखो, उसमें लाइन लगा दो बाबा मैं ओके हूँ। तो बाबा कह रहे हैं हर एक अपना ओके का कार्ड अपने टीचर के पास चार्ट के रूप में देते रहना, ज्यादा नहीं लिखो, बाबा कितना टाइम वेस्ट होता है ज्यादा लिखने में और ओके लिखने में कितना टाइम लगेगा, ज्यादा नहीं लिखो, बस एक कार्ड ले लो उसमें ओके लिखो या लाइन डाल दो। कई जब बाबा ने कहा ना तो फिर विदेशी इतने कार्ड भेजते थे, इतने कार्ड, बस एक ही कार्ड आता रहता है, इसमें ओके लिख बाबा आई एम ओके, बाबा आई एम ओके, तो कम से कम बाबा तो याद रहेगा ना, और तो कुछ नहीं, बाबा बोला बाबा आई एम ओके तो बाबा तो याद रहेगा ना, बस ये तो कर सकते हो ना, लंबा पत्र नहीं लिखो, बाबा कहते लिखो ओके लंबा पत्र नहीं लिखो। अच्छा अभी सुनते हैं आज का वरदान, संगम युग पर प्रत्यक्ष फल द्वारा शक्तिशाली बनने वाली सदा समर्थ आत्मा भव। संगम युग पर प्रत्यक्ष फल द्वारा सदा शक्तिशाली बनने वाली समर्थ आत्मा भव। संगम युग पर जो आत्माएं बेहद सेवा के निमित्त बनती है, उन्हें निमित्त बनने का प्रत्यक्ष फल शक्ति की प्राप्ति होती है। ये प्रत्यक्ष फल ही श्रेष्ठ युग का फल है। ऐसा फल खाने वाली शक्तिशाली आत्मा किसी भी परिस्थिति के ऊपर सहज ही विजय पा लेती है। वह स्वर्थ बाप के साथ होने के कारण व्यर्थ से सहज मुक्त हो जाती है। जहरीले सांप समान परिस्थिति पर भी उनकी विजय हो जाती, परिस्थितियां कितनी भी कठिन हो तो बाबा कहती हैं वह जहरीले सांप समान परिस्थिति पर भी उनकी विजय हो जाती है। इसलिए यादगार में दिखाते हैं ना कि श्री कृष्ण ने सर्प के सिर पर डांस किया। स्लोगन, पास विद ऑनर बनकर पास्ट को पास करो और बाप के साथ सदा पास रहो। पास विद ऑनर बनकर पास्ट को पास करो और बाप के साथ सदा पास रहो। अव्यक्त इशारे जो अभी टाइटल चल रहा है, अशरीरी व विजयी स्थिति का अभ्यास बढ़ाओ। अशरीरी व विजयी स्थिति का अभ्यास बढ़ाओ। जैसे बाप दादा अशरीरी से शरीर में आते हैं, वैसे ही बच्चों को भी अशरीरी होकर शरीर में आना। बाबा है अशरीरी, शरीर में आते हैं लेकिन डिटैच रहते ना। जैसे बाप दादा अशरीरी से शरीर में आते, वैसे ही बच्चों को अशरीरी होकर शरीर में आना है। अव्यक्त स्थिति में स्थित होकर फिर व्यक्त में आना है। जैसे इस शरीर को छोड़ना और शरीर में आना, अव्यक्त होकर के व्यक्त में आना, तो ऐसा होता है जैसे शरीर को छोड़ना और शरीर का लेना है। तो बाबा कहते हैं ये अनुभव सभी को है। ऐसे ही जब चाहो तब शरीर का भान छोड़कर अशरीर बन जाओ और जब चाहो तब शरीर का आधार लेकर कर्म करो। बिल्कुल ऐसे ही अनुभव हो जैसे ये स्थूल चोला, बिल्कुल ही ऐसे अनुभव हो जैसे ये स्थूल चोला अलग है और चोले को धारण करने वाली मैं आत्मा अलग हूँ। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति। अच्छा, जो भारतवासी यहाँ ठहरे हुए हैं और आज जा रहे वो हाथ खड़ा करें। जो भारतवासी यहाँ ठहरे हुए हैं आज जा रहे वो हाथ खड़ा करें। ओके, अच्छा वो डबल विदेशी भाई बहने जो आज जा रहे वो हाथ खड़ा करें। Those double foreign sisters and brothers who are leaving today, please raise your hand. Achha. After meditation, today's program for all the double foreigners, sisters and brothers will be announced. After the meditation, all the double foreigners, sisters and brothers are requested to stay back. Today's program will be announced after meditation. Double Videshi bhai bane baithe rehenge. Yog ke baad, aaj ka, saare din ka, प्रोग्राम बताया जाएगा। अच्छा, ओम शांति।